जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया।
सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया।
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया।
की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया।
भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा।
भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा।
लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा। लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया।
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया।
आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी।
राघव कृपा हो जो तेरी।
उजियाले पूनम की हो जाए रातें ज्योति अमावस अंधेरी।
उजियाले पूनम की हो जाए रातें
ज्योति अमावस अंधेरी। ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया।
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए।
ओम शांति। सहन करने की कला, आर्ट ऑफ टॉलरेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति को सहन करें। प्रकृति माना पांच तत्व, जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, और दूसरा प्रकृति माना ये देह रूपी प्रकृति। हमारा ये शरीर भी पांच तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए पांच तत्व इसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जो चीज जिससे मिलके बनी होती है वो उसको प्रभावित करती है। इसीलिए जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है तो हमारी ये देह रूपी प्रकृति भी बदलती है। सतयुग में भी हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलके बना है, लेकिन वहां पांच तत्व सतो प्रधान है, इसलिए हमारा शरीर भी संपूर्ण सतो प्रधान है। वहां हम आत्माएं प्रकृति के बंधन में नहीं आती, प्रकृति जीत आत्माएं है, इसलिए प्रकृति संपूर्णतः सुखदायी है। लेकिन यहां हम आत्माएं प्रकृति के परवश हो जाती है, अधीन हो जाती है, इसलिए हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तो क्या हम ऐसा पुरुषार्थ करें, क्या हम ऐसा अभ्यास करें? किन बातों को आप स्मृति के अंदर रखें, किस बात का चिंतन करें, ताकि इस देह रूपी प्रकृति को चलाते हुए भी इस देह के प्रभाव में हम ना आए, और कैसे इस देह को मालिक होकर इस प्रकृति देह रूपी प्रकृति को हम चलाएं, तो उसके लिए हम कुछ बातें देखेंगे कि क्या क्या अभ्यास हमें करने जरूरी हैं, ताकि हम इस शरीर रूपी भान में ना आए। तो सबसे पहले आत्मिक अभ्यास उसके लिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जन्म जन्म से आत्मा पार्ट बजाते बजाते शरीर के प्रभाव में आ गई है। तो सबसे पहले पहले हमें उसके लिए आत्मिक अभ्यास की जरूरत है ना। जो भी आत्माएं हमें सारे दिन में, जिस भी आत्मा को हम देखते हैं, तो उसके शरीर को ना देख के आत्मा को ही देखना है। कहीं पे भी एक स्थान पे बैठ जाओ शांति से, और जो भी आत्माएं वहां से जा रही है, सबको यही देखो कि ये आत्मा है, ये आत्मा जा रही है ना। कहीं पे भी जाती है वो आत्मा चल रही है, आत्मा घूम रही है, डाइनिंग में जा रही है आत्मा खा रही है आत्मिक अभ्यास करना शरीर को देखते हुए आत्मा देखना है कि आत्मा घूम रही है, आत्मा बात कर रही है अभ्यास ऐसे ही करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा का मन वो सुनते हैं ना, कि कैसे वो अभ्यास करते थे कि जसोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। हमारी इसी अभ्यास की कमी हो जाती है, इसलिए देहभान में जल्दी आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का ये अभ्यास पक्का था, इसलिए वो कोई भी बात होती थी तो उसके प्रभाव में नहीं आते थे। लेकिन हमारे अभ्यास की कमी इस पहला ही पाठ बाबा कहते हैं कि कच्चा है। तो यही हमें पहले, सबसे पहले पहले अपना फाउंडेशन मजबूत करना है। भले ही आत्मा देखो या नहीं देखो वो बात अलग है, लेकिन संकल्प यही करना है कि आत्मा ही है, आत्मा ही देख रही है, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा के संपर्क में आ रही है ना। तो जो संकल्प होंगे उससे वही एनर्जी क्रिएट होगी, तो धीरे 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 वो हमारी आत्माभिमानी स्थिति सहज ही बनती चली जाएगी। उसके लिए सबसे पहले पहले हमें आत्मिक अभ्यास की जरूरत है। दिन में कम से कम 50 आत्माओं को तो देखना ही है कि आत्मा है। कम से कम 50 आत्माओं को, क्योंकि इतने आत्माओं के क्या संपर्क में आते होंगे, बाकी तो देखते हुए भी नहीं देखते उन्हें। तो सबसे पहला अभ्यास करना है आत्मिक अभ्यास, और दूसरा है बार बार जो हमारा घर है शांति धाम, बार बार उसको याद करना है, क्योंकि जिसे हम याद करेंगे तो वहां के संस्कार ही हमारे अंदर सहज रीति आ जाते हैं, और यहाँ के प्रभाव से हम सहज ही मुक्त होते चले जाएंगे। तो बार बार अगर हमें शांति धाम की याद रहेगी, घर की याद रहेगी, तो अपने आप ही धीरे धीरे हमारी यहाँ से उपराम अवस्था होती चली जाएगी। बाबा कहते हैं ना कि घर में रहते हुए, यहाँ पे रहते हुए भी, इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी बुद्धि घर में लगी रहे, है ना। तो सहज ही हमारा इस बुद्धि से, इस पुरानी दुनिया से, बुद्धि से किनारा होता चला जाएगा। तो बार बार घड़ी घड़ी हमें शांति धाम, है ना, अपने घर की याद करनी है। बार बार वहां शांति धाम में जाना है, देखना है उस दुनिया को, कैसी वो दुनिया है, जब मैं आत्मा वहां पे थी तो कैसी थी, किस किस प्रभाव से मुक्त थी। नहीं, इसीलिए अभ्यास करना है, इसीलिए फिर हमें फिर वो अभ्यास करना है, बार बार घर जाने का अभ्यास। और तीसरा है अशरीरी बनने का अभ्यास, है ना। बाबा कहते हैं ये शरीरी आत्माएं हैं हम, लेकिन अशरीरी आत्मा को यह शरीरी बनने में मेहनत क्यों लगती है, क्योंकि अपने मूल स्वरूप को, है ना, उतना डीपली हम रियलाइज नहीं कर पाते। क्यों अशरीरी आत्मा को इतनी मेहनत लगती है, लगता है कि हाँ अशरीरी बनना तो बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए तो कर्म कर, बाबा कहते हैं कि कर्म करते कितना भी कर्म का प्रभाव हो, कितना भी जितना ज्यादा से ज्यादा कर्म हो, उस कर्म के अंदर एक सेकंड में तुम्हारी अशरीरी अवस्था हो जाए, है ना। बीच बीच में ड्रिल का अभ्यास करो, कोई भी कर्म करते करते भी एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ तो उस कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि एकांत में बैठे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, फिर भी अशरीरी बनना मेहनत लगता है, उसमें इतना सहज रीति से हम अशरीरी बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ना, यहाँ की जो बातें हैं, सोच है, वो सब हमने अपनी बुद्धि के अंदर भर के रखी है। कैसे यहाँ पे रहते हुए भी एक सेकंड में हम इस शरीर से डिटैच हो जाए, है ना, क्योंकि 84 जन्मों से पार्ट बजाते बजाते, आत्माइश पार्ट बजाते बजाते अपने आप को शरीरधारी ही समझने लगी है। तो कैसे हम इस शरीर के भांग से मुक्त हो? तो बार 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 अशरीरी बनने की दिल का अभ्यास करना होगा, तभी हम उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, है ना। देखना है बार बार कि ये शरीर रूपी चोला टाइट तो नहीं है, शरीर के बंधन में तो नहीं हूं मैं आत्मा, कौन कौन से बंधन बांध के रखे हैं, है ना। उनको सबसे बुद्धि योग हटाने वाला, ज्ञान की समझ से सारे वो बंधनों को काटते जाना है, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे रोज 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 अभ्यास करेंगे तो सहज होता चला जाएगा फिर हमारे लिए शरीर बनना। और है फिर बेहद की विशाल बुद्धि होके हमें सोचना है हर बात को, हर बात को बेहद की विशाल बुद्धि होके देखना है। बाबा कहते हैं कि इतना बड़ा परिवार है हमारा, है ना, तो उस परिवार में कैसे चलते हैं, इकोनॉमी से चलते हैं, उसके लिए हमारी स्थिति भी ऊंची होनी चाहिए। अगर हमारी स्थिति ऊंची नहीं होगी तो हम सारी दुनिया को सकाश नहीं दे सकते, है ना। उसके लिए हमारे लिए रहम की भावना हो हर आत्मा के प्रति, रूहानी आशीर्वाद की किरणें आत्माओं को देना, वरदानी किरणें आत्माओं को देना। और कैसे मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति पे सेट होके, उसकी सीट पे सेट होके कैसे हम आत्माओं को वो सकाश दे, तो वो अभ्यास में करना है। जैसे बाबा कहते हैं कि सूरज होता है ना, सूरज जितनी ऊंची स्थिति में है, जितना ऊंचाई पे होगा तो उतनी दूर तक वो किरणें फैला सकता है। अगर सूर्य नीचे आ जाए तो उसकी किरणें चारों ओर नहीं फैल सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे ऊंची जो हमारी स्थिति है वो बाप समान बनने की स्थिति है। तो उस स्थिति के अंदर हम रहेंगे तो स्वतः ही हमसे वो किरणें चारों तरफ फैलती रहेंगी। तो अपने स्टेज को, अपनी स्थिति को ना बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित करके रहना है, तभी हम वो शक्तियों की किरणें, है ना, रूहानी स्नेह की किरणें उन आत्माओं तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हद के परिवार में हर चीज में, दुनिया के अंदर भी सब इकोनॉमी से चलता है, जितना बड़ा परिवार होता है उतना उसके अंदर इकोनॉमी की जाती है हर बात की, क्योंकि परिवार के अंदर सबका ध्यान रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है, बेहद का परिवार है ना। अगर स्वयंप्रति ही खाया और अपने लिए ही कमाया, अपने लिए ही खाया, तो विश्व को क्या देंगे ना। उसके लिए फिर हमें सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना है अपने अंदर। ऐसा ना हो कि शक्तियों की हमारे पास या गुणों की हमारे अंदर निर्धनता हो, हम उसको दे ही ना पाए। और श्रेष्ठ सम्मान की स्मृति में रह के हमें हर कर्म करने हैं। सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, पूर्वज आत्मा हूं। तो अगर हमारे अंदर वो श्रेष्ठ सम्मान की स्मृति रहती है तो हमें उसके कर्तव्य भी सहज ही याद आ जाते हैं, है ना। अगर हम ऊंची सोचेंगे ही नहीं ऊंचा, तो फिर वो हम अपने उस कर्तव्य को भी पूरा नहीं कर सकते। तो सदा सोचना कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, मुझे इन आत्माओं के कल्याण के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया है ना। लाइट हाउस, माइट हाउस बन के सर्व शक्तियों की, शांति की, पवित्रता की किरणें सारे विश्व के अंदर फैलानी है। बाबा कहते हैं ना कि अंतिम समय जो होगा वो बहुत दर्दनाक का होगा, है ना। हर आत्मा दुखी होगी, अशांत होगी, भय में होगी, चिंता में होगी। तो कैसे हम उन आत्माओं को सकाश देके, है ना, उनको उस दुख दर्द से मुक्त कर सकते हैं? क्योंकि आत्माएं तो निर्बल हैं, वो कमजोर हैं, उनके अंदर वो शक्ति नहीं है। हमें तो दाता का साथ मिला है, भगवान हमें दे रहा है। अगर हम ही नहीं देंगे तो और कौन देगा दुनिया में? और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के रखना है और अपने आप को भी भरपूर करना है और इतना लेना है कि ताकि हम दूसरी आत्माओं को भी समय पर उनको मदद कर सके। और हमें निश्चय और विश्वास हो, है ना, जो भगवान ने हमें बताया है उसके प्रति हमें निश्चय हो और विश्वास हो कि हाँ इस ड्रामा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी है। इस चीज में अगर हमें निश्चय होगा यहाँ सर्व आत्माएं दुखों से छूट जाएंगी, ये जो विनाश जो है ये कल्याणकारी विनाश है, कोई दुख देने के लिए नहीं है। जब हमें इस चीज की स्मृति रहती है तो हमारे अंदर वो सहन शक्ति आ जाती है अपने आप ही, सारी परिस्थितियों को देखने की, सारी बातों को फेस करने की। तो वो हमें रूहानी नशा हो, है ना, कि जो इस ड्रामा के अंदर हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है और यही होना चाहिए इस ड्रामा के अंदर, क्योंकि इसी में ही सर्व आत्मा के प्रति कल्याण समाया हुआ है। और वैराग्य भाव हो, इस सर्दी गर्मी बरसात सबसे वैराग्य है ना, और हमारी वैराग्य वृत्ति हो, है ना, क्योंकि अगर जहां हम अटैच होंगे तो वो चीजें हम पे प्रभाव डालती रहेंगी, इसीलिए पहले यहां से डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होंगे तो फिर हम सहज ही, है ना, उस चीज के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो अंतिम समय जो दर्दनाक जो सीन होगा उसका भी हम पे इफेक्ट आ जाएगा। और अगर हम खुद ही प्रभाव में आ गए तो हमारी स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। इसीलिए बाहर की जो भी बातें हैं उनका हम पे प्रभाव ना पड़े। और अंत में जो बाबा कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अकाल, भूकंप, बाढ़, चारों ओर अग्नि अग्नि होगी, साधन काम नहीं करेंगे, है ना, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तो बाबा कहते हैं कि जो अंत में जो सीन होगा वो बहुत दर्दनाक होगा, क्योंकि हर तरफ से सहारा टूट चुका होगा ऐसे समय में, है ना, क्योंकि कोई भी परिस्थिति जब हमारे सामने अचानक आती है हम उसके लिए तैयार नहीं होते, तो उससे हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक स्थिति हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन बाबा ने हमें हर चीज का पहले से ही ज्ञान दिया है कि कैसे अंतिम समय में कैसे कैसे पेपर आएंगे, कैसे विनाशकारी सीन हमें देखने पड़ेंगे, चारों तरफ बाबा कहते कि लाशों के ढेर होंगे लेकिन उनके ऊपर से तुम्हें निकल निकल के जाना है ना। इतनी हमारी पावरफुल स्थितियों की लगे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब रबड़ के पुतले पड़े हैं, है ना, ये तो सब पुराने तमोप्रधान शरीर है, इनसे क्या मुंह रखना है। तो धीरे 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 तभी हम उस स्थिति से स्वयं को बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम खुद ही देखेंगे अरे खून ये वो उसको देख के, तो हमारी खुद की स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर हमारी खुद की स्थिति डिस्टर्ब हो गई तो हम दूसरों को कैसे सकाश देंगे, है ना। बाबा तो कहते हैं कि अंतिम समय में उसी के लिए तो बाबा तैयारी करा रहे इतने समय से, तो उसके लिए फिर बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। धीरे 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 हमारे जो डेली की जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी परिस्थितियां जो हमारे जीवन के अंदर आती हैं, वो हमें बाबा इसलिए कहते हैं कि मजबूत बनाने के लिए आती है, ताकि अंतिम दर्दनाक बड़े सीन को उसको देख सके, फाइनल पेपर जो होने वाला है उसके लिए फिर हमें शुरू पहले से ही अभ्यास की जरूरत है। तो मानसिक रूप से अपने आप को उसके लिए तैयार करना है कि कैसी वो दर्दनाक सीन होंगे, कैसी वो दर्दनाक स्थिति होगी, क्योंकि हम आत्माओं को तो बुद्धि योग फिर भी छूटा हुआ है बहुत सी चीजों से, लेकिन दुनिया वाले तो इन चीजों को जानते ही नहीं, उनकी बुद्धि तो उसी में लगी हुई है, वो तो उनका तो जीवन का आधार ही वो सब चीजें हैं, है ना। तो वो आत्माएं फिर वो भय में, चिंता में दुखी होंगी, अशांत होंगी, तो उस टाइम पे फिर हमें कैसे परमात्मा से शक्ति लेकर उन आत्माओं को भी शक्ति देनी है, और कैसे उन आत्माओं को भी उस दुख और दर्दनाक सीन के प्रभाव से मुक्त करना है। जन्म जन्म की जो उन आत्माओं की आश है मुक्ति, जीवन मुक्ति की, कैसे उन आत्माओं को सकाश देना है। आत्मा के लिए कहते हैं कि वो हर चीज के प्रभाव से मुक्त है, लेकिन जब हम देह के अभिमान में आ जाते हैं तो सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम का हमारे ऊपर असर पड़ता है, है ना। ये हमारी देहभान की स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे अपने अगर सोल कॉन्शियसनेस की हमारी प्रैक्टिस मजबूत होगी, बार बार हम ये देह से अलग होने का अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा तो इससे अलग हूँ, मुझे आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, सर्दी गर्मी बरसात हवा धूप जल इन चीज़ों से मैं कोई चीज़ मुझे छू नहीं सकती, है ना, इन चीज़ों के प्रभाव से मैं मुक्त हूँ, तो फिर हम उस चीज को सहन कर सकते हैं। अगर देह बहान होगा तो ठंडी लगेगी और भगवान की याद की चादर ओढ़ लो, है ना। भगवान की याद की वही सेफ्टी का साधन है, है ना। परमात्मा कहते हैं मेरी याद ही सेफ्टी का साधन है। उसके लिए तो जैसे भक्ति मार्ग में भी वो दिखाया है, शंकर जी को दिखाया कि है ना, उन वसनीय देह रूपी देह का भान नहीं है उनको, है ना। लेकिन अभी तो आत्मा शरीर के प्रभाव में क्या करेंगे, ठंडी नहीं लगे हमें, क्योंकि ज्ञान योग नहीं करना है, संकल्पों अपोजिट संकल्प करना, तो जैसे संकल्प करेंगे वैसी फीलिंग आने लगेगी हमें। समान का अभ्यास करेंगे, योग की अग्नि को है ना प्रज्वलित करना है, पावरफुल संकल्प करना है, डांस रनिंग एक्सरसाइज और सर्दी से बचने के लिए जो साधन जिम गर्म गर्म गर्मी में फिर ही सोचना है ठंडी भगवान की याद, ये सोचना है कि परमात्मा की याद की शीतल फुहारे मेरे मन को भिगो रही है ना, भगवान की यादों का शीतल झरना मेरे मन को आनंदित कर रहा है। इसे हाँ भट्टी में बैठे हैं भट्टी में बैठे हैं भगवान की याद की छत्र छाया में बैठ जाना, भगवान की याद की छत्र छाया में बैठ, उसके लिए ज्ञान बरसात है। संगम युग की नौका में बैठ के पार हो जाना है। प्रकृति जीत आत्मा प्रकृति प्रकृति जीत बनने के लिए सबसे पहले तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं प्रकृति की मालिक आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, मैं प्रकृति के बंधन से मुक्त आत्मा हूँ, मैं प्रकृति पति की प्रकृति प्रकृति की साथी आत्मा हूँ बहन साथी आत्मा हूँ विश्व कल जितने प्रकृति मुझे मान नहीं सकती, मैं प्रकृति की रक्षक हूँ, प्रकृति पालना करने वाली हूँ, मेरी पवित्रता प्रकृति के लिए खुराक है, प्रकृति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं प्रकृति ना मैं प्रकृति भगवान हूँ, मैं प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ, प्रकृति हाँ प्रकृति मुझ पर निर्भर है, मैं प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ, मैं प्रकृति प्रकृति को भी ऊर्जा देने वाली आत्मा हूँ, मैं प्रकृति को सत्व प्रधान बनाने वाली आत्मा हूँ, पावन बनाने वाली आत्मा हूँ, प्रकृति शुद्ध होती जा रही है, जल अग्नि वायु धरती आकाश सब पावन होते जा रहे हैं, मैं प्रकृति को भी पावन बनाने वाली आत्मा हूँ, प्रकृति मेरी माँ है, और मैं। प्रकृति मेरी रचना है, प्रकृति को धन्यवाद करना, प्रकृति को शुक्रिया करना, प्रकृति के, प्रकृति ने मेरी इतनी पालना की है, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति मुझे शक्तिशाली बना रही है, प्रकृति मुझे संपन्न बना रही है, प्रकृति मुझे, प्रकृति है ना, प्रकृति हमारी मददगार, प्रकृति हमारी मददगार है, हम प्रकृति के मददगार हैं, हम प्रकृति हमारी सेवाधारी है, हम प्रकृति के सेवा, हम दोनों एक ही परिवार के, प्रकृति का हमारा जन्म जन्म का नाता है, सर्व सर्व नष्ट मोह बन जाओ, सर्व संबंधों से नष्ट मोह बन जाओ। प्रकृति मुझे स्वस्थ रख रही है, प्रकृति मेरी सहयोगी है, प्रकृति मेरी दासी है, प्रकृति से मुझे सारी विटामिन मिल रहे हैं, मेरी आंखें शुद्ध हो रही है, बुढ़ापा दूर हो रहा है, अमरता का वरदान मिल रहा है प्रकृति में। हाँ, प्रकृति हमें सहन शक्ति सिखलाती है, प्रकृति हमारी शिक्षक है, प्रकृति हमारी शिक्षक है, कई पाठ पढ़ाती है। प्रकृति निष्पक्ष रूप से सेवा करती है, सबको एक समान देती है, किसी को कम या ज्यादा नहीं देती है। जैसे सूरज सबको एक समान रोशनी देता है, इसी प्रकार प्रकृति भी सबको समान रूप से सबकी सेवा करती है। हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, बहुत उसको हानि पहुंचाई है, इसलिए इस समय हमें प्रकृति की सेवा करनी है, उसको पवित्र वाइब्रेशन परमात्मा से लेकर उस आत्मा को पहुंचा, प्रकृति को पहुंचाने है, सकाश देना है, प्रकृति के प्रति आदर भाव रखना है, रक्षा भाव। प्रकृति ने हमें स्वादिया अनाज दिया सर, प्रकृति से क्षमा याचना करना है। जितना हम प्रकृति के नजदीक जाएंगे उतना हम निरोगी होते जाएंगे। प्रकृति के नजदीक जाने के लिए खुली हवा में बाहर नहीं, खुली हवा में बाहर प्रकृति के सानिध्य में जाकर थोड़ी देर समय बिताना है, वहां के पहाड़ झरने वादियां सबको देखना है, नेचुरल है ना, पंछियों की आवाज है ना सुनना है, धीरे धीरे शांत मन से उनकी आवाज को सुनना है ना, प्राकृतिक चीजों को यूज करना है, नेचुरल चीजें सारी यूज करनी है, प्रकृति के ऊपर कविताएं लिखने। ओम शांति।
सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे, सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे करते प्यार हैं, फूलों से खुशबू जैसे, ओ बाबा तुमसे ऐसे किस दिल का प्यार है। सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे, चाहिएंगे इस भीड़ भरे संसार में एक पल भी ना रह पाए बिन तेरे प्यार में। तुम बिन क्या जिएंगे इस भीड़ भरे संसार में एक पल भी ना रह पाए बिन तेरे प्यार में। मौसम से हवाएं जैसे बादल से जल जैसे मौसम से हवाएं जैसे बादल से जल जैसे करते प्यार हैं तारों से अंबर जैसे ओ बाबा तुमसे ऐसे इस दिल का प्यार है सूरज से किरणें जैसे सागर से लहरें जैसे।